ओम शांति। प्रिय दर्शकों, हम आज जिस तरह की आपाधापी की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे में तनाव का होना स्वाभाविक है, दुख और पीड़ा भी स्वाभाविक रूप से हमें अपने वश में कर लेने के लिए आगे आते रहते हैं। आज हम जिन लोगों के बीच उपस्थित हैं, वे हैं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर सक्रिय रहते हुए, अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हुए, काम को अंजाम देते हुए, अवकाश प्राप्त करने के बाद समाज को अपने विशद अनुभव का लाभ निरंतर दे रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स काउंसिल के वरिष्ठ नागरिक हमारे बीच हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। और अपनी अपनी समस्याएं हैं और समस्याओं का अंबार है, धरती भी पर्यावरण से प्रदूषित हो रही है, चारों तरफ तनाव का वातावरण है, दुखी दुख है। और इसके निराकरण के लिए बिहार प्रांत के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला में स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका, जो संपूर्ण उत्तर बिहार को नियंत्रित करती है और अपने अनुभव का, अपनी साधना का, अपनी तपस्या का निरंतर लाभ देती रहती है, राजयोगिनी परमादरणीय रानी दीदी, और रानी दीदी से मार्गदर्शन कार्यक्रम में हम विभिन्न समस्याओं का समाधान, उनकी आध्यात्मिक जिंदगी से निकले हुए निचोड़ और अमृतमय वचन से प्राप्त करेंगे। रानी दीदी, ओम शांति। और हम सीधे सीधे आपको लिए चलते हैं अपने वरिष्ठ नागरिकों के बीच। आज जिंदगी जिस तरह की कृत्रिमता के संजाल में फंस गई है, पर्यावरण, शोर, फिर आंतरिक तनाव, पारिवारिक दुर्व्यवस्था, पीढ़ियों का टकराव और पीढ़ियों के गैप और विभिन्न मानसिकता के कारण परिवार विखंडित हो रहा है। ऐसे में जिन बुजुर्ग नागरिकों को सम्मान चाहिए, आदर चाहिए और निरंतर उनका अभिनंदन होना चाहिए, आज वे कहीं न कहीं से अपने पारिवारिक वातावरण में भी और बाह्य वातावरण में भी घुटन महसूस कर रहे हैं। आखिर इस घुटन से निजात के क्या उपाय हैं, और विभिन्न नागरिकों की समस्या से हम रूबरू होंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं अवकाश प्राप्त प्राध्यापक, हिंदी के जाने माने कवि, जिन्होंने साहित्य सृजन करते हुए ही नहीं बल्कि कई कई पीढ़ी के विद्यार्थियों को तैयार करते हुए भी उन्हें सुख, चैन और शांति का जीवन जीने का रहस्य निरंतर बतलाया है। लेकिन आज उम्र के इस पड़ाव पर न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक विषमताओं के भी शिकार हो रहे हैं, मानसिक अशांति को भी झेल रहे हैं, और यह अशांति अपने आध्यात्मिक जीवन होने के बावजूद वातावरण में और परिवेश में जिस तरह का तनाव है उससे प्रभावित है। मेरा आशय डॉक्टर राजनारायण राय जी से हैं, और आपकी समस्या का समाधान करने के लिए परमादरणीय राजयोगिनी रानी दीदी यहां उपस्थित है। डॉक्टर राजनारायण जी,
आज के बदले परिवेश में भावनात्मक विचारों, भावनात्मक संबंधों का अभाव हो गया और मान सम्मान का ह्रास हुआ है, उस परिस्थिति में कौन सा प्रयोग किया जाए संभव है, मैं यही जानना चाहता हूं आपसे।
भावनात्मक क्षोभ और मान सम्मान का जो संदर्भ है उसको केंद्र में रखकर किया गया यह अतिवाजिब प्रश्न है। और रानी दीदी, आप
आज के समय में जो समाज में सम्मान मिलना चाहिए, धीरे धीरे जो वर्तमान पीढ़ी है वो उतना सम्मान उनको नहीं दे पाती है। स्वयं परमपिता परमात्मा हमें ये ऐसी अनोखी शिक्षा देते हैं, ऐसा अनोखा रास्ता बताते हैं जिससे हम इस मान और सम्मान के प्रभाव से परे चले जाते हैं। मान दूसरे से मिलता है, अपमान भी दूसरे से मिलता है। आध्यात्मिक शक्ति कहती है आइए स्वयं को पहचान लें और स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं कितना शक्ति संपन्न हूं, ये शरीर की अवस्था है, बड़ी अवस्था ये शरीर की अवस्था है, मैं तो आत्मा हूं। अपने को आत्मा निश्चय करके और परमपिता परमात्मा के साथ एक गहरा नाता स्थापित करके अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट को जगाएं, स्वमान को जगाएं कि मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूं, वो कल्याणकारी है, मैं भी कल्याणकारी हूं, बिना बदले की इच्छा रखते हुए, बिना बदले की भावना रखते हुए मुझे दाता बनकर देना है। सारी उम्र तो दिया ही दिया है ना, प्यार दिया है, शिक्षा दी है, अर्जित धन सारा अपने बच्चों को दिया है, समाज को अनेक प्रकार के अपने अनुभवों से लाभ पहुंचाया है, और आज भी उसी दातापन की सीट पर बैठना है, आज भी परमात्मा से उन शक्तियों को लेना है। ऐसा गहरा संबंध परमात्मा के साथ जुटा हुआ रहे, हम स्वमान में रहे, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, मेरा संबंध उस ऑल माइटी के साथ है। अगर ये संबंध जुटा हुआ है, हम आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हैं, तो हमारे द्वारा सबको मान मिलता रहेगा।
आज पूरा विश्व विज्ञान के विकास पर इतरा रहा है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, पूरे विश्व में बहस भी चल रही है। एक तरफ विज्ञान से हमें लाभ है तो दूसरी तरफ नकारात्मक उपयोग भी उसका हो रहा है, और व्यापक स्तर पर मनुष्य प्रकृति विरोधी हो रहा है, और विज्ञान के विकास से कहीं न कहीं हानि भी हो रही है, और वह हानि आंतरिक जीवन की हानि है। हमारे बीच उपस्थित हैं अवकाश प्राप्त इंजीनियर रामाशीष पांडे जी, उन्होंने तकनीक का उपयोग किया होगा अपने कार्य क्षेत्र में, और आज अवकाश प्राप्त करने के बाद इसी परिवेश में, इसी परिवार में, विभिन्न मनोवृत्तियों के बीच इस उम्र में आखिर किस तरह से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, और आंतरिक स्तर पर पारिवारिक वातावरण को, पारिवारिक संकेत को, पारिवारिक संवाद को मान अपमान से जोड़कर किस तरह से देखते हैं, और जिंदगी सहज जीने का उनका किस तरह का सिलसिला है। रामाशीष पांडे जी, दीदी आपके समक्ष हैं, और वर्तमान में आप क्या कुछ महसूस कर रहे हैं?
आज जो हम लोगों के बीच रिटायर्ड पर्सन जो हैं, जिन्हें एंगेजमेंट नहीं है, उनके साथ तरह तरह की कठिनाइयां हो रही हैं। आपके इस अध्यात्म के जरिए उसका क्या निदान हो सकता है
कि अगर हमारी बुद्धि में श्रेष्ठ चिंतन भरा है, श्रेष्ठ ज्ञान भरा है, और हम उसे अपने साथियों में बांटें, ये इतनी बड़ी व्यस्तता है, इतना बड़ा कार्य है, लेना और देना। आज हम कहते हैं मनुष्य का मन शुभ भावना और शुभ कामना से भरा रहना चाहिए, लेकिन हमने देखा है शुभ भावनाएं भी जगानी पड़ती हैं, उसकी भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, अपने आप शुभ भावनाएं भी नहीं जागृत होती। तो हमारे अंदर जो ज्ञान है उसे जागृत करना, शुभ भावनाओं को जागृत करना, शुभ कामनाओं को जागृत करना, ऐसा अगर हमें रोज आना ज्ञान का भोजन बुद्धि को मिल जाए तो सारी समस्याएं खत्म। सुबह या शाम हम उसको लें और बाकी टाइम औरों को दें। मनुष्य के विचार हर समस्या का समाधान है, एक श्रेष्ठ विचार समस्या खत्म कर देते हैं और एक कमजोर विचार समस्या पैदा कर देते हैं। तो हम समझते हैं कि हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, उन सभी को ये आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ अवश्य लेना चाहिए। ऐसे तो लोग कहते हैं भाई अभी ये उम्र आई है आध्यात्मिक ज्ञान सुनने की, बच्चे तो लोग कहते हैं अभी तो हम बूढ़े होंगे तब ज्ञान लेंगे, और अब सीनियर सिटीजन है तो अब वो कहते हैं अब हम वहां जा ही नहीं सकते आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए, या प्रतिदिन वहां उपस्थित नहीं हो सकते। यही समय है उनको प्राप्त करने का, इसलिए हम समझते हैं सारे कार्यों से फ्री होकर पहले अपने बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन में लगाने के लिए सहयोग लें। सत्संग सबसे बड़ी शक्ति है जो आत्मबल बढ़ाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और औरों के प्रति भी हमारा दृष्टिकोण ऊंचा करता है।
बहुत स्वाभाविक प्रश्न, लंबे समय तक नौकरी करने के बाद अवकाश प्राप्ति के बाद स्वाभाविक रूप से आदमी खाली हो जाता है अगले सदस्य से और अगले प्रश्न के साथ और उत्तर के लिए रानी दीदी। सीनियर सिटीजन्स काउंसिल के सदस्यों के बीच एक ऐसे सदस्य भी हैं जो निरंतर अपने व्यापार से जुड़कर, अपने परिवार से जुड़कर सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी रुचि लेते रहे हैं, लेकिन मनुष्य अंततः जहां आता जाता उठता बैठता है, कभी बाह्य स्तर पर, कभी मानसिक स्तर पर, कभी आंतरिक स्तर पर, कभी हार्दिक स्तर पर, दुख और अभाव महसूसता ही है। मैं श्री उमाशंकर कहनानी जी से उनकी समस्या को जानते हुए समाधान के लिए राजयोगिनी रानी दीदी की ओर मुखातिब हूं। उससे पहले उमाशंकर कहनानी जी,
अल्टरनेटिव मेडिसिन से जो हम लोग फायदा उठावे, जो एक बोझ परिवार पर सीनियर सिटीजन का जो आ जाता है इलाज का, वो कम हो जाए, क्योंकि ये थोड़ी सस्ती विधा है और इसका फायदा सीनियर सिटीजन को भी होगा, परिवार को भी होगा।
अगर तन में दर्द है, शरीर में दर्द है, तो डॉक्टर दर्द की दवा देता है। अगर दिल में दुख है तो दुख की दवा डॉक्टर के पास नहीं है। इसलिए हम समझते हैं, पहले हमको मानसिक रूप से बहुत प्रसन्न रहना है, बहुत संतुष्ट रहना है। परिवार के हर व्यक्ति, हर सदस्य के प्रति हमारा मन प्रसन्न चित रहे, उन्हें आशीर्वाद देता रहे, उन्हें वरदान देता रहे, उन्हें दुआएं देता रहे। अगर हमारा ऐसा व्यवहार है तो हमारे तन में रोग कम से कम होगा, दर्द की दवा मिलेगी और ठीक हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आजकल कई प्रकार के आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइज इत्यादि भी स्वस्थ रखने में सहयोगी होते हैं, और भी कई होम्योपैथिक इत्यादि मेडिसिन भी शरीर में ज्यादा रिएक्शन नहीं करती, उसका भी सहयोग मिलता है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसा इलाज करें, कम से कम इलाज करना पड़े और मन सदा प्रसन्नचित रहे, परमात्मा की याद से ऐसी शक्ति प्राप्त होती रहे कि हमें महसूस ही ना हो कि हम रिटायर हुए हैं, हम अवकाश प्राप्त हैं। अवकाश तो मिलता ही नहीं, हमेशा तो हमें अनेक आत्माओं को, अनेक लोगों को हमें खुशियां बांटनी है, हमें उन्हें सुख देना है, हमें उनकी सामर्थ्य को बढ़ाना है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी हम सब के ऊपर है। तो हम समझते हैं अगर हमारा मन ऐसा प्रसन्नचित रहे तो हम थोड़ी दवा और बाकी दुआएं, आशीर्वाद हमारे सारे दुख दूर कर देगी। जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआएं काम करती हैं, वहां आशीर्वाद काम करती हैं। तो हम एक संकल्प कर लें, आइए दुआओं का खजाना इकट्ठा करें, आइए सबके आशीर्वाद इकट्ठे करें और सबको आशीर्वाद देते रहें। कोई हमारे मनपसंद काम न करे तो भी आप सबके अंदर क्षमा शक्ति है। अगर किसी को क्षमा कर दिया, दिल से भुला दिया, तो भी उसका मन भी प्रसन्न होगा और अपना भी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, अपना भी शुगर नहीं बढ़ेगा। अगर किसी की बात को पकड़ लेते हैं और बार बार सोचते रहते हैं तो क्या होता है, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अपना शुगर बढ़ जाता है, कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। तो भगवान कहते हैं सबको क्षमा करो, सबको गले लगाओ, सबको प्यार बांटो।
सच है कि शरीर व्याधि मंदिरम है, उम्र ढलने के बाद नाना प्रकार की बीमारियां हमें आक्रांत करती हैं, लेकिन जिस तरह से दीदी ने इस प्रश्न को उत्तरित किया, सीधा सीधा यह कि अधिकांश बीमारियां मनोजगत से उपजती हैं और देह में कोई पीड़ा है, दर्द है, तो उसे उबरने के लिए हम मन को पुष्ट करें और मन से दूसरे से अपने आप को जोड़ते हुए निरंतर हम प्यार बांटते चलें। निश्चित रूप से हमारे शरीर का रोग भी कम होगा और रोग के निदान के लिए दीदी ने सर्वमान्य चिकित्सा, जिससे शरीर को हानि भी कम हो, और कुछ आसन, ध्यान, प्राणायाम, और जब हमारी दिनचर्या ठीक रहेगी और मानसिक जगत भी हमारा आनंदमय और साधनामय रहेगा, तो निश्चित रूप से शरीर के रोग से हम पीड़ित भी नहीं होंगे और समाज के लिए हितकर कार्य करते रहेंगे। बैंक कर्मी रह चुके और डेबिट क्रेडिट का हिसाब निरंतर देखते सुनते हुए, उस तरह के जटिल कार्यों को निपटाते हुए आज एक सामाजिक जीवन वरिष्ठ नागरिक की हैसियत से और पारिवारिक जीवन भी निरंतर जी रहे हैं। निश्चित रूप से शारीरिक स्तर से लेकर मानसिक स्तर तक कहीं न कहीं दुविधा और द्वंद के भी शिकार उन्हें होना पड़ता होगा। मैं श्री एचएल गुप्ता जी से उनकी समस्या और उसके समाधान के लिए फिर दीदी के पास, मैं तुम महज एक संयोजक की भूमिका में, आप हैं, दीदी हैं, राजयोगिनी रानी दीदी और समाज के मार्गदर्शक वरिष्ठ नागरिक श्री एचएल गुप्ता जी।
आज हम लोगों का खान पान दूषित हो गया है, सात्विक छोड़ के तामसी भोजन की ओर झुकाव बढ़ रहा है। कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, जिसके कारण मन भटकता रहता है, मन एकाग्रचित नहीं होता है। इसको ठीक करने के लिए, मन को एकाग्रचित करने के लिए क्या किया जा सकता है?
अगर हम तामसिक भोजन करते हैं तो पचता ही नहीं है। तामसिक सबसे बड़ी समस्या तो ये है, भोजन पचता नहीं है, इसलिए गैस होती है, अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए भगवान ने कहा है अपने मन को सात्विक बनाओ, सतोगुणी बनाओ, इसके लिए सात्विक भोजन, जिसमें ये मांस मछली ये सब तामसिक भोजन है, प्याज लहसुन भी तामसिक भोजन है, इनसे मुक्त होकर शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, वो भी परमात्मा की याद में रहकर उनके अर्पण करके। ऐसा भोजन जो शरीर में रोग उत्पन्न करेगा ही नहीं, जो हमारे तन को भी स्वस्थ रखेगा, हमारे मन को भी प्रसन्न रखेगा। दो बातें याद रखेंगे, जैसा अन्न वैसा मन, और हम कहते हैं जैसा मन वैसा अन्न। बनाने वाले का मन जैसा होगा, खाने वाले का मन वैसा ही हो जाएगा। इसलिए जहां तक हो अपने परिवार में शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन करें, बजाय इसके कि गरिष्ठ तला हुआ, जिसको आज डॉक्टर वर्जित करते हैं, वो भोजन ना करके अगर सादगी में रहते हैं तो मन शीतल रहता है, शांत रहता है और परमात्मा को याद करने में सहयोग मिलता है। इसलिए हमें अपने भोजन को सभी को कहना चाहिए कि भोजन हल्का करें, लाइट करें, तो आसानी से पचे और हमारे आध्यात्मिक जो परमात्मा की याद है उसमें स्थित होना भी आसान हो जाए।
हमको लगता है कि स्वाद के चक्कर में तामसी भोजन की ओर मुखातिब होते होंगे लोग, जबकि मनुष्य तो प्राकृतिक रूप से शाकाहारी है। तो दीदी ने इस प्रश्न का समाधान दिया कि हम सहज स्वाभाविक सादगी पूर्ण जीवन में और सादगी पूर्ण भोजन में स्वाद महसूस करें और उसी से आनंदित हो। मनुष्य मूलतः शाकाहारी है। दीदी ये वरिष्ठ नागरिकों के बीच एक ऐसे नागरिक भी हैं जिन्होंने लंबे समय तक वरीय पुलिस पदाधिकारी का जीवन जिया, और पुलिस की कितनी उलझने होती हैं और पुलिस की दिनचर्या कैसी होती है, 24 घंटा ड्यूटी में, और फिर पुलिस कहते ही एक सामाजिक जो धारणा बनती है, लेकिन उससे इतर अवकाश प्राप्त करने के बाद एक पारिवारिक जीवन और एक संभ्रांत वरिष्ठ नागरिक का जीवन जी रहे हैं केवल प्रसाद जी, केवल प्रसाद शाह जी, और उनकी भी समस्या है। तब भी समस्या रही होगी पुलिस पदाधिकारी के सामने, अब एक वरिष्ठ नागरिक के सामने समस्या है और अवकाश प्राप्त डीएसपी साहब आपकी समस्या।
अब मैं 13 वर्षों से अवकाश प्राप्त का जीवन व्यतीत कर रहा हूं और ऐसी स्थिति महसूस कर रहा हूं जो अपने घर में ही मैं अपने को बिल्कुल असुरक्षित समझ रहा हूं।
ये बहुत जटिल प्रश्न है।
मेरे परिवार बिल्कुल बिखर चुका, कोई साथ में रहने वाला नहीं है, सेग्रीगेशन का जीवन व्यतीत करता हूं।
एक ही प्रश्न में कई प्रश्न हैं।
देखिए ये आज के समय की ये समस्या आज अनेकों के पास है, तो इसके लिए हम ये कहेंगे पहले अपने मानसिक रूप से सुरक्षित हो जाएं। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, मेरे सब काम वही करेंगे, अकेला कभी हो ही नहीं, हम अकेले नहीं हैं, उनको अपना साथी बनाना है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और मेरा पालनहार, मेरा जिम्मेवार, करण करावनहार एक परमात्मा है। इसलिए परमात्मा का अच्छी पहचान लेकर उनके साथ ऐसा गहरा प्रेममय संबंध जोड़ लें। गाया हुआ है ना, तुम्ही माता हो, तुम्ही पिता हो, तुम्ही बंधु हो, तुम्ही सखा हो, तुम्ही स्वामी हो। सारे रिश्ते अगर उनके साथ हम जोड़ लेते हैं तो जीवन आनंदमय हो जाता है। और हमारा ये अनुभव है, हमने कभी भी उस परम पिता परमात्मा को कोई कार्य हमारे सामने है उनके सामने रख दिया, वो किस किस को भेज के उस कार्य को पूरा कर देता है, हजारों भुजाओं वाला है उसके तो सब कुछ, वो जो चाहता है वो कर लेता है। इसलिए हमारी सुरक्षा तो उनकी गोद में है, उनके प्यार में है, उनके साथ अपने योग में है। और आप ये अनुभव करेंगे कि मेरा हर कार्य वो कर जाता है, मेरा हर खुशी मुझे दे जाता है, हर आनंद मुझे दे जाता है। ऐसा प्रेम उनके साथ जोड़े तो संपत्ति की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा सब हो रही है, और करने वाले पहुंच जाते हैं, कर जाते हैं, वो करावन हार करा रहा है। आप कदम कदम पर ऐसे अनुभव करेंगे।
जैसे बच्चे की सुरक्षा की चिंता उसकी माँ करती है, तो आत्मा की सुरक्षा परमात्मा करते हैं। इसलिए हम अपने को पूरे विश्वास के साथ अपनी सुरक्षा परमात्मा के हवाले,
ऐसा गहरा संबंध जोड़े, उनसे बैठकर बातें करते रहें, अपने को अकेला महसूस ही नहीं करें, और वो हमें हर सुविधा प्रदान करेगा, वो हमें ऐसे साथी भेजेगा जो उन कार्यों को पूरा करेगा।
तो आज हमने अपने दर्शकों के बीच, वरिष्ठ नागरिकों के बीच से निकालकर कई प्रश्न और उसके उत्तर के लिए राजयोगिनी रानी दीदी से हम समाधान प्राप्त करते हुए एक कई ऐसे प्रश्न जिससे हमें हर कदम पर जूझना पड़ता है, उसे झेलना पड़ता है, और अंततः मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य जिस तरह के वातावरण में रहता है उसी वातावरण में तनाव है, और ऐसे में मनुष्य जीने की कला को कैसे विकसित करे, मनुष्य अपने होने की को कैसे सार्थक करे, और इसके लिए राजयोग का अभ्यास, निरंतर साधना का अभ्यास, अपने को शरीर न मानकर अपने को आत्मा मानते हुए, परमात्मा के पास निरंतर जाते हुए, अपने भीतर के सकारात्मक तत्वों को, सकारात्मक व्यक्तित्व को वह निरंतर समाज के हित में, संस्कृति के हित में, राष्ट्र के हित में शुभ संकल्पों के साथ, शुभ भाव के साथ अगर प्रकट करता रहता है तो हम अकारण उपज रहे तनावों से निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे। और हमारा जैसा कि बीबी सिन्हा जी ने कहा कि ये हमारी जो यही यात्रा है, तो यह अंतिम यात्रा ना, हम कहीं से भी अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं और कहीं से भी सुखद जीवन हमारा हो सकता है। और आत्मा तो अनी है, आत्मा की अनवरत यात्रा होती रहती है। आपका व्यापक लाभ, आपका व्यापक अनुभव और दीदी का मार्ग निर्देशन, और ऐसे में निरंतर बनेगा एक संतुलित समाज। और फिर हम अगले कार्यक्रम में मार्गदर्शन के अंतर्गत फिर हम जुड़ेंगे दीदी से और फिर हमारे बीच समाज के दूसरे क्षेत्र में काम करने वाले अनेक लोग होंगे जिनके सामने समस्याओं का अंबार होगा। ओम शांति दीदी, और दर्शकों को भी ओम शांति, और आप तमाम सीनियर सिटीजन्स काउंसिल के वरिष्ठ सदस्यों के प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके अनुभव का लाभ हमारी कई कई पीढ़ियों को मिले, इस शुभकामना के साथ ओम शांति।